दोस्तों, वस्ती के पतन के बाद हमारा अगला हेडिंग है मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा। असेंबली में इस बात पर काफी बहस हो रही थी कि जो कुछ करना है उसकी घोषणा होनी चाहिए, क्रांति का कोई सिद्धांत तो होना ही चाहिए। रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट से उन्हें प्रेरणा मिल रही थी। मिराबो, लाफेत और सीए ने अलग-अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। अंत में 27 अगस्त को ईश्वर नहीं बल्कि सर्वोच्च सत्ता को साक्षी मानकर नागरिकों के अधिकारों की घोषणा की गई। घोषणा में निम्न बातों पर विशेष बल दिया गया। मनुष्यों को कुछ नैसर्गिक अधिकार हैं जो उन्हें जन्म से प्राप्त होते हैं, जैसे अपनी सुरक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार आदि। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति होती है। राज्य का जन्म व्यक्तियों के सामूहिक प्रयत्न का फल है, इसलिए व्यक्ति को स्वयं अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन और विधि निर्माण में भाग लेना चाहिए। तीसरा है, किसी भी संस्था का, चाहे वह परिवार हो या राज्य, यह कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों की रक्षा करे। चौथा, राजा व्यक्ति का दमन न करे, इसके लिए उसके अधिकारों पर नियंत्रण की व्यवस्था होनी चाहिए। यह घोषणा रूसो के विचारों और आदर्शों से ओतप्रोत तथा उसी से प्रेरित थी। जुलाई और अगस्त में घटी घटनाओं का इस पर प्रभाव अवश्य था, लेकिन मूलतः यह क्रांति के आदर्शों और अधिक कार्यक्रमों पर कम प्रकाश डालती थी। कहा जाता है कि वस्तु स्थिति को ध्यान में नहीं रखने के कारण क्रांति काल के कार्यक्रमों पर इस घोषणा ने विशेष प्रभाव नहीं डाला। पर यह भी सच है कि फ्रांस ही नहीं, सारी दुनिया के लोगों को इसने प्रेरित किया। एक्टन ने कहा है कि यह कागज का टुकड़ा नेपोलियन की सेना से अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी मानव अधिकारों को प्रभाषित करने की योजना द्वारा सैकड़ों वर्ष पुरानी इसी घोषणा का सम्मान किया। इस घोषणा ने क्रांति को एक व्यापकता प्रदान की और मानव मात्र के अधिकारों की मांग ने क्रांति के पक्षधरों और शत्रुओं की स्थिति स्पष्ट करते हुए दोनों की संख्या बढ़ा दी। असेंबली के इस उद्बोधन में सच्चाई थी कि मानव अधिकारों को सदियों से गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है। उन्हें इस प्रकार स्थापित किया जा रहा है कि वे उत्पीड़कों के विरुद्ध सतत संघर्ष के आह्वान के रूप में जीवित रहें। लफेवर के अनुसार राजा ने कुलीनों और सामंतों का पक्ष लेकर पूंजीपति तथा मध्यम वर्ग के हितों का विरोध करना शुरू कर दिया था। यह उसके और देशों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण था। वेरसाई का सशंकित राज परिवार तरह तरह की योजना बना रहा था। क्रांति से भयभीत लोग देश छोड़कर भाग रहे थे और फ्रांस की सीमाओं पर जमा होकर षड्यंत्रों का बाजार गर्म कर रहे थे। इसी बीच पेरिस की औरतों ने वेरसाई जाकर लुई और उसके परिवार को पेरिस आने पर मजबूर कर दिया। जब लाचार लुईस पेरिस आ रहा था तो साथ में भीड़ यह कहती हुई और नाचती हुई आ रही थी कि हमारे साथ रोटी वाला और उसका परिवार है। जनता अभी भी लुई के विरुद्ध नहीं थी। वह निर्णायक भूमिका अदा कर सकता था, लेकिन वह बिल्कुल ढुलमुल और कमजोर सिद्ध होता जा रहा था। हमारा अगला हेडिंग है पादरियों का कानून। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। फ्रांस की जनता अधिकांशतः कैथोलिक थी। वहां अब भी पोप और पादरियों का महत्व जनजीवन पर उनका अत्यधिक प्रभाव था। वोल्टेयर की आलोचना के कारण और प्रबुद्धता के बढ़ने के साथ लोग या तो धर्म विरोधी होते जा रहे थे या धर्म की तात्कालीन व्यवस्था के आलोचक। ऐसे ही लोगों का असेंबली पर प्रभाव था। वे पादरियों और पोपों के महत्व को सीमित करना चाहते थे, इसलिए एक नए विधान का निर्माण हुआ जिसकी घोषणा इस प्रकार हुई। नंबर 1, फ्रांस की बेढंगी धार्मिक इकाइयों को समाप्त कर उनकी संख्या सीमित कर दी गई। उनकी क्षेत्रीय सीमा को स्पष्ट ढंग से निर्धारित कर दिया गया। दूसरा, धर्म के अधिकारियों के चुनाव का अधिकार जनता को दिया गया। तीसरा, ये अधिकारी राज्य के कर्मचारी होंगे और इनके वेतन भत्ता और छुट्टी का निर्धारण राज्य द्वारा होगा। चार, पोप केवल उन्हें औपचारिक स्वीकृति दे सकेगा। पांच, पादरियों के लिए भी प्रशासन का नियम मानना अनिवार्य होगा और वे दंडित भी किए जा सकते हैं। छः, पादरियों के लिए राष्ट्र कानून और प्रजा और राजा के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी जरूरी हो गई। यह मानना आवश्यक हो गया कि वे अपनी सारी शक्तियों से असेंबली द्वारा घोषित संविधान की रक्षा करेंगे। इस विधान ने फ्रांस में एक विभाजन कर दिया। यह सच था कि फ्रांस में कैथोलिक धर्म का एक राष्ट्रीय स्वरूप था और पोप के हस्तक्षेप और पादरियों की राजनीति में रुचि और क्षोभ व्यक्त किया जाता था, लेकिन आम जनता परंपरागत थी, इसलिए इस घोषणा को समर्थन नहीं मिला। जिन पादरियों ने इसे स्वीकारा उन्हें ज्यूरर, और जिन्होंने इसे अस्वीकारा उन्हें नॉन ज्यूरर कहा गया। इसे एक बार और सुने। जिन पादरियों ने इस संविधान को स्वीकारा उन्हें ज्यूरर, और जिन पादरियों ने इस संविधान को नहीं स्वीकारा उन्हें नॉन ज्यूरर कहा गया। इस विभाजन क्रांति का विरोध बढ़ने के यह विभाजन क्रांति का विरोध बढ़ाने में सफल हुआ। बिशप लोग साधारण मतदाताओं द्वारा चुनाव, जिनमें प्रोटेस्टेंट और यहूदी लोग भी शामिल थे, बहुतों को स्वीकार्य नहीं था। क्रांति का धर्म के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट होने लगा। लुई अब धार्मिक आधार पर क्रांति का दुश्मन हो गया। केवल चार बिशपों ने नए कानून के अंतर्गत शपथ ली। 46,000 छोटे पादरियों ने अपनी धार्मिक परंपरा छोड़ने से इनकार कर दिया। अब क्रांतिकारी सरकार ने इन पादरियों को सजा देना शुरू कर दी, तो क्रांति स्वतंत्रता और शांति के स्थान पर लोगों को विशेषकर उनके विशेषाधिकार छिन गए। अधार्मिकता और हिंसा और एक नए प्रकार के पहले से बदतर क्रूर उत्पीड़न की ओर दिखाई देने और पढ़ने लगी। दूसरी ओर इसे धर्म को राज्य के अनुशासन के अंतर्गत लाने का श्रेय दिया जाता था। कुछ भी हो, यह क्रांतिकारियों का एक साहसिक कदम था, लेकिन लुई ने इसे स्वीकार करने में आनाकानी की। बाद में उसने तो दबाव में इसकी स्वीकृति दे दी, लेकिन पोप ने इसे नहीं माना। उसने उन पादरियों को निष्कासित कर दिया जो विधान को स्वीकार कर चुके थे। इसका प्रभाव शिक्षा पर भी पड़ा, कारण शिक्षा मुख्यतः चर्च के नियंत्रण में थी। यह स्थिति तब तक बनी रही जब तक नेपोलियन ने पोप से समझौता नहीं किया। इतना कुछ होने के बावजूद आर्थिक स्थिति नहीं संभली। संपत्ति छोड़ लोग भाग गए थे। राष्ट्रीय संपत्ति का जन्म तो हुआ था, लेकिन इस जमीन को खरीदे कौन? पूंजीपति लोगों ने यह काम किया। जरूरत के लिए कागज की मुद्रा का चलन हुआ। इस जमीन पर अधिकार करना ही क्रांतिकाल का निर्णायक तत्व बन गया। इस अधिकार की सुरक्षा के लिए कानून बने, हत्याएं हुई और क्रांति का मनमाने ढंग से उपयोग हुआ। मजदूरों की स्थिति बेहतर बनाने का प्रयास किया गया। उनकी मजदूरी निश्चित और नियमित तथा कार्य पद्धति मानवीय और आरामदेह बनाने के प्रयास हुए, लेकिन क्रांति मजदूरों के पक्ष में कितनी है, इसका पता तब चला जब मानव अधिकारों की घोषणा से प्रेरित होकर मजदूर अपने संघ बनाने की योजना की तैयारी करने लगे। इससे पूंजीवादी नेतृत्व आतंकित हो गया और यह कानून बना कि मजदूर अपना अलग से संघ नहीं बना सकते। यह घोषणा में दिए गए अधिकारों की अवहेलना थी, लेकिन ऐसा तो क्रांति के दौरान कई बार हुआ था। हमारा अगला हेडिंग है 1791 का संविधान। तो आइए शुरू करते हैं 1791 का संविधान। स्थितियां काफी बदल चुकी थी और निरंतर परिवर्तन हो रहे थे। शासन का स्वरूप बदल रहा था और संगठित रूप देने के लिए असेंबलीकृत संकल्प थे। नया संविधान बनाने का निश्चय हो चुका था। अंत में 1791 में पहली बार फ्रांस के इतिहास में संविधान का निर्माण हुआ। इस संविधान के प्रथम भाग में मानव अधिकारों की पूर्व घोषणा को वैधानिक रूप दे दिया गया। इसमें कुछ नए प्रावधान जोड़े गए, जैसे देश से बाहर जाने का अधिकार, संपत्ति के लिए मुआवजा पाने का अधिकार तथा शिकायत करने का अधिकार। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों की कुछ प्रतिज्ञाएं भी की गईं, जैसे गरीबी के विरुद्ध कानून, शिक्षा का नया रूप आदि। राज्य का पुनर्गठन किया गया। प्रशासन के लिए राज्य को जिलों, विभागों और कम्यूनों में बांट दिया गया। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कम्यून थी। पहले शिक्षा, शासन और चर्च के लिए अलग अलग इकाइयाँ थीं, अब उन्हें एक कर दिया गया। मॉन्टेस्क्यू के प्रभाव में राज्य के कार्यों का विभाजन कर दिया गया। व्यवस्थापिका के लिए हर वयस्क को, जो कम से कम 3 दिनों की आमदनी कर के रूप में देश देता हो, मत देने का अधिकार दिया गया। 745 सदस्यों की एक सदन वाली प्रतिनिधि सभा का प्रावधान किया गया। इस सभा के सदस्यों को देप्यूते, इसे एक बार और सुने, इस सभा के सदस्यों को देप्यूते कहा गया। इस सभा को कानून बनाने का अधिकार था। इसके द्वारा बनाया गया कानून राजा की औपचारिक स्वीकृति के बाद लागू होता हो जाता था। इससे किसी सदस्य को मंत्री बनाने का अधिकार नहीं था। हर वर्ष मई मास में सभा की बैठक अनिवार्य थी। राजा इसे भंग नहीं कर सकता था। इसके स्वीकृति के बिना युद्ध या शांति की घोषणा नहीं हो सकती थी। इस प्रकार एक शक्तिशाली स्वतंत्र व्यवस्थापिका का प्रावधान किया गया। राजा कार्यपालिका के सर्वोच्च अधिकारी था। उसके द्वारा नियुक्त किए गए मंत्रियों की मदद से प्रशासन करता था। व्यवस्थापिका सभा से किसी मंत्री का संबंध नहीं हो सकता था। नियुक्त मंत्रियों और राजदूतों के लिए व्यवस्थापिका की अनुमति आवश्यक थी। व्यवस्थापिका द्वारा पारित किए गए कानूनों को राजा केवल कुछ दिनों के लिए अस्थाई निषेध द्वारा टाल सकता था। उसके और उसके परिवार के खर्च के लिए रकम निश्चित कर दी गई और इस प्रकार एक नियंत्रित कार्यपालिका बनी, जिसने राजा के अधिकारों पर संवैधानिक अंकुश लगा दिए गए। न्यायपालिका के सदस्यों ने भी निर्वाचन का विधान बनाया गया। न्याय को सस्ता और सुलभ बनाया गया। ज्यूरी की व्यवस्था हुई। नारी जाति को मत देने के अतिरिक्त प्रायः सभी प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए। नागरिक विवाह और तलाक के नियम बनाए गए। अब तक तिरस्कृत और प्रताड़ित यहूदियों को भी समान अधिकार दिया गया। इस तरह यह संविधान क्रांतिकारियों के आदर्शों, लक्ष्यों और हितों और उनकी सीमाओं का भी परिचायक था। अपनी ही घोषणाओं के विरुद्ध इन संविधान के निर्माताओं ने सबको बराबर के अधिकार नहीं दिए, क्योंकि वे मध्यमवर्गीय प्रमुखता बनाए रखना चाहते थे। राज्य के कार्यों का पूरी तरह विभाजन अव्यवहारिक था। न्यायपालिका के चुनाव का प्रावधान उसे भ्रष्ट कर सकता था। इतनी तेजी से हो रही घटनाओं के बीच एक ऐसा संविधान बनाना जिससे कि किसी प्रकार का परिवर्तन प्रायः असंभव था, अदूरदर्शी और दंभपूर्ण कार्यवाही थी। इसी आदर्शपूर्ण दंभ के कारण और अदूरदर्शिता के अभाव में असेंबली के सदस्यों ने प्रस्ताव पारित कर भावी सभा के लिए अपने चुने जाने पर निषेध लगा दिया था। इस आत्मत्याग ने अब तक के अनुभव से भावी सभा को वंचित कर दिया। नए प्रतिनिधियों को चुनने में प्रतिभाओं और नए उत्साह की संभावना तो थी ही, लेकिन अनुभव का अपना अलग महत्व होता है। बहुविधि घटनाओं ने इन संविधान को शीघ्र ही निरर्थक साबित कर दिया, लेकिन पूंजीवादी राजतंत्र मध्यम वर्ग के बढ़ते प्रभाव और शक्ति का सूचक था। इस तरह नेशनल असेंबली को अपने संक्षिप्त कार्यकाल में महत्वपूर्ण उपलब्धियों का श्रेय दिया जा सकता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपने 500 वर्षों के जीवन में भी उतना कुछ प्राप्त नहीं किया था। श्रोताओं, अब हम एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण हेडिंग की रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं। इस हेडिंग के ऊपर हमारी परीक्षाओं में निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, अर्थात जैसे, यह क्रांति फ्रांस में ही क्यों हुई? यह एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर हम इस हेडिंग के अंतर्गत देखते हैं। हेडिंग का नाम है क्रांति फ्रांस में ही क्यों। क्रांति का एक दौर सर्वेक्षण कर लेने के बाद एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि क्रांति फ्रांस में ही क्यों हुई? फ्रांस यूरोप का सबसे गरीब देश ही नहीं था, गरीब देश भी नहीं था, और दूसरी ओर जनता में व्याप्त असंतोष की पृष्ठभूमि में कोई राजनीतिक भूमिका भी नहीं थी। इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करते हुए इस बात का अध्ययन आवश्यक है कि फ्रांस में क्रांति कैसे सफल हो पाई। घटनाओं की सम्यक अध्ययन इतना तो अवश्य स्पष्ट कर देता है कि यह क्रांति स्वतः स्फूर्त नहीं थी, वस्तुतः संपूर्ण यूरोप में स्थिति खराब थी। ताकलीव ने लिखा है कि सारा यूरोप जर्जर था, लेकिन वह कहां से टूटेगा यह पता नहीं था। इस अस्पष्ट स्थिति के समाप्त होने के बाद फ्रांस क्रांति के लिए सबसे उर्वरक भूमि के रूप में सामने आया। क्रांति के लिए जिन भौतिक स्थितियों और जागरूकता की आवश्यकता होती, वे फ्रांस में ही विद्यमान थी। क्रांति बिल्कुल भूखा आदमी नहीं कर सकता, उसके पास अपनी स्थिति तक समझने का अवसर नहीं होता, उसे बदलने की बात ही और है। फ्रांस की जनता न इतनी गरीब थी कि जीवन की आपाधापी में अपने को ही समाप्त कर देती, और न ही इतनी समृद्ध कि यथास्थिति का पोषक बन जाए। उत्पादक लोग उत्पादन के साधनों से वंचित थे, किसान अधिकांशतः भूमिहीन थे, आर्थिक विषमता और उसके विरुद्ध जागृति बढ़ रही थी। सामंतों और पूंजीपति के बीच संघर्ष होना अब अनिवार्य हो रहा था। इंग्लैंड के पार्लियामेंट का विकास होने पर वहां के जागरूक लोगों को सत्ता में शामिल किया गया और राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति के लिए स्थानीय तथा राष्ट्रीय मंच भी वहां थे। यूरोप के अन्य देशों में प्रबुद्ध शासकों ने सुधार का मरहम लगाया था, फ्रांस में इसके विपरीत घोर केंद्रीकरण था। और इसके अतिरिक्त न तो किसी तरह की स्वतंत्रता थी, न ही सत्ता में सहभागिता, इसलिए यह असंतोष अभिव्यक्त न होकर एक भूचाल की तैयारी में संगठित हो रहा था। फ्रांस जैसी विषमता अन्य देश में नहीं थी। विशेषाधिकार संपन्न सामंत और पादरी अपनी कुलीनता के नाम पर हर स्थान पर वरीयता प्राप्त करते थे और अन्य लोगों को असम्मानित करते थे, विशेषकर नगरों में। मध्यम वर्ग पग पग पर पार्टियों, थिएटरों या घर में असम्मानित महसूस करता था। सामाजिक विषमता घुटन पैदा कर रही थी और वह परिवर्तन की आशंका उत्कट कर रही थी। फागे ने कहा है कि फ्रांस की क्रांति जितनी राजतंत्र के विरुद्ध नहीं थी, उतनी असमानता के विरुद्ध थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि पूंजीपति वर्ग क्रांति के लिए इच्छुक और तत्पर था। कोई अन्य वर्ग न इतना सक्षम था और न ही इतना तत्पर और न इतना संगठित। 18वीं शताब्दी के विचारकों की मदद से इस वर्ग ने स्थितियों का आकलन कर लिया था और वह परिवर्तन की संभावना के विषय में आश्वस्त हो गया था। वह अपनी लड़ाई में अपनी योग्यता तथा सामर्थ्य का भरपूर उपयोग करना चाहता था। क्लबों और बैठकों के माध्यम से उनके बीच विचारों का आदान प्रदान भी होता था और उनका संकल्प तथा संगठन भी सुदृढ़ होता जा रहा था। सामंत वर्ग की जर्जरता और अपनी शक्ति से परिचित इस मध्यम वर्ग ने क्रांति का आह्वान और नेतृत्व किया और सबसे अधिक लाभ भी स्वयं भी उठाया। जिस तरह फ्रांस के राजा में ही राज्य की समूची सत्ता केंद्रित थी, उसी तरह फ्रांस की राजधानी पेरिस में फ्रांस का केवल वैभव ही नहीं, योग्यता और चेतना भी केंद्रित थी। वह फ्रांस की बौद्धिक सांस्कृतिक राजधानी भी थी। उसका प्रभाव सारे फ्रांस पर भी नहीं, अपितु यूरोप पर भी था। क्रांति के दौरान वहाँ अनेक समाचार पत्र निकले और राजनीतिक पर्चेबाजियों का कोई अंत नहीं था। समाचार पत्रों में मार द्वारा संपादित फ्रेंड ऑफ द पीपल सबसे उग्र था। मोनिटर में आजकल के पत्रों की भांति समाचार और विभिन्न विषयों पर टिप्पणियां प्रकाशित होती थीं। राजतंत्रवादियों ने भी अपने पत्रों के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत करना शुरू कर दिया था। कहावत यह थी कि पेरिस को जब छींक आती थी और जुकाम हो जाता था। ऐसे पेरिस में नई स्थितियों और नई चेतना का भी केंद्रीकरण हो रहा था। वेरसाई की राजधानी बन जाने के कारण पेरिस का महत्व कम हो गया और यह तनाव बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुआ। वेरसाई भी दूर नहीं मुँह चिढ़ाती हुई कुछ मील दूर स्थित थी। इस तरह पेरिस की भूमिका क्रांति की पृष्ठभूमि और उसका प्रभाव बनाने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। दूसरी ओर चारों तरफ असंतोष था। बुद्धिजीवी उद्वेलित थे। जहां बारूद और आग दोनों मौजूद थे, वहां आग क्यों नहीं लगती? यहां एक प्रश्न यह भी उठता है कि क्या क्रांति अनिवार्य थी? विभिन्न इतिहासों का अध्ययन करने पर हम स्पष्ट देखते हैं कि यह क्रांतिकारी परिस्थितियां किस देश में है, तो क्या क्रांति अवश्य होगी? फ्रांस में क्रांति होना इस बात का सबूत है कि वहां क्रांति के लिए जमीन तैयार थी, इसलिए न होने का प्रश्न ही नहीं उठता। हम परिकल्पना का सहारा लेकर सोच सकते हैं कि अमुक कार्य होते तो शायद क्रांति नहीं होती। यदि लुई के पास रिसलू और कोलेबर जैसे मंत्री नहीं होते तो स्थिति शायद बेहतर होती। स्वयं लुई दूरदर्शी और योग्य प्रशासक होते हुए भी स्थितियां संभाल सकता था। यदि उसने मीराबो का सुझाव स्वीकार किया होता और मौलिक सुधार करके क्रांतिकारियों को निरस्त कर दिया होता तो क्रांति टल सकती थी। लेकिन यह सब कैसे होता? कोई भी व्यक्ति अपने और अपने वर्ग के चरित्र के अनुकूल ही व्यवहार करता है। राजा की स्थिति तो डवाडोल थी ही, इधर रानी भी भयाक्रांत थी और शुरू से ही देश छोड़ देने के पक्ष में थी। राजा एक एक कर ऐसी बातों को स्वीकारता जा रहा था जो उसकी समझ से बाहर थी। उसकी दुविधा के कारण नए नियम कानून ठीक से लागू नहीं हो पा रहे थे। ऐसी स्थिति में केवल मीराबो ही उसकी रक्षा कर सकता था। मीराबो, अगले हेडिंग के अंतर्गत हम मीराबो को पढ़ते हैं। मीराबो का एक सामंत परिवार में जन्म हुआ था, लेकिन उसके अध्ययन और अनुभव ने उसे तृतीय वर्ग का प्रतिनिधि बना दिया था। देखने में उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली नहीं था, लेकिन वास्तव में वह बहुत कुशल और दूरदर्शी था। स्थितियों को समझने की उसमें अद्भुत क्षमता थी। योग्यता के बावजूद उसे उचित प्रतिष्ठा नहीं मिली थी, क्योंकि उसका चरित्र अविश्वसनीय था। वह बेहद खर्चीला था, इसलिए धन के लिए गलत काम भी कर बैठता था। अपनी गैर जिम्मेदाराना हरकतों के लिए उसे सजा मिल चुकी थी, लेकिन उसके लिए बदल पाना असंभव था। स्टेट्स जनरल के चुनाव में वह तृतीय वर्ग की ओर से चुना गया था। अपने वर्ग को सबसे सशक्त अभिव्यक्ति उसने उस समय दी जब प्रतिनिधियों को अपदस्थ करने के लिए आए राजा के कर्मचारियों ने उससे कहा कि हम यहाँ जनता की इच्छा से हैं और हमें यहाँ से केवल संगीने हटा सकती हैं। एक अन्य अवसर पर जब उसे कुत्ता कहा गया तो उसने कहा कि ठीक है, मैं कुत्ता हूँ, लेकिन मेरे काटने से राजतंत्र मर जाएगा। इस तरह वह अपनी बात कहने में पूर्णतः निर्भीक बना रहता था। वह इंग्लैंड के संविधान का प्रशंसक था। वह चाहता था कि फ्रांस का राजा एक संविधान द्वारा नियंत्रित हो और फिर वह भी पूरी तरह शासन करे। उसके विचार से राजा को क्रांति का नेतृत्व करना चाहिए था। वह लुई को तैयार करना चाहता था कि लुई स्वयं आवश्यक परिवर्तन करे और भीड़ के प्रभाव से बचे। जब भीड़ का दबाव बढ़ने लगा तो उसने लुई को पेरिस छोड़कर किसी राजतंत्र समर्थक क्षेत्र में चले जाने को कहा। उसका विश्लेषण सही था कि जनता बुराइयों के विरुद्ध है, राजा या राजतंत्र के विरुद्ध नहीं। राज परिवार की स्थिति बड़ी विडम्बनापूर्ण थी। वह अपने को तृतीय वर्ग का प्रतिनिधि समझता था, इसलिए सामंत और राज परिवार उसके प्रति अविश्वास करते थे। चूंकि मीराबो जन्म से सामंत था, इसलिए तृतीय वर्ग उस पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर पाता था। उसका चरित्र अविश्वास बढ़ाने में सहायक था। उसने राजा से गुप्त रूप से मिलने का प्रयास किया। यह बात लोगों को पता लग गई और उसे शंका की दृष्टि से देखा जाने लगा। धीरे धीरे नेतृत्व उसके हाथ से निकलता गया। जीवन के अंतिम दिनों में उसकी स्थिति दयनीय थी। वह कभी राजा को अपनी बात समझाने की कोशिश करता तो कभी असेंबली को। घटनाओं का ज्वार उसके ऊपर से बहने लगा। मरते समय वह हताश और लाचार हो गया था। सिडनी स्मिथ के अनुसार वह एक विद्यार्थी, भोगी, सैनिक, लेखक, कूटनीतिज्ञ, राजनेता, जनवादी, दरबारी, गद्दार, सब कुछ एक साथ था। उसके कार्यकाल में किसी व्यक्ति ने मिराबो की तुलना में उतनी दुनिया देखी थी, न उतने कार्य किए थे, न उतने दुख भोगे थे, न उतने कुछ सीखा था और न उतना महसूस किया था। मिराबो ने कहा था कि वह अपने साथ फ्रांसीसी राजतंत्र की आशा की अंतिम किरणों को लिए जा रहा है और यह सच था। राजा उसके सुझाव को स्वीकार कर ही अपनी स्थिति और जान बचा सकता था। निर्विवाद है कि उस समय किसी व्यक्ति में राजनेता के गुण नहीं थे। उसकी मृत्यु के बाद फ्रांस का राजतंत्र लड़खड़ाता रहा। चारों तरफ से निराश हुई लुई की पत्नी बात मानने के लिए मजबूर हो गई और फ्रांस से भागने की तैयारी होने लगी। एक रात को छदम वेश में राज परिवार के कुछ परिचरों के साथ उत्तरी पूर्वी सीमांत की ओर भाग निकली। सीमा के दूसरी ओर यूरोप के अन्य राज परिवारों की सहायता उसका इंतजार कर रही थी। वहां पहुंच जाने पर शायद लुई और उसके परिवार की रक्षा हो जाती। राजतंत्र का भविष्य शायद तब कुछ भिन्न होता, लेकिन एक साधारण किसान द्रुए को शंका हुई और उसने लोगों की मदद से लुई को रोक लिया। तब तक पेरिस में राजा के पलायन की खबर फैल चुकी थी। उसके महलों में यह लिखकर पट्टी टांग दी गई कि यह मकान खाली है। शर्म से गड़े विश्वासघाती लुई को कैदी के रूप में पेरिस लाकर पहरे में रखा गया। स्थितियों पर फिर से विचार करना आवश्यक हो गया। जिस संविधान पर राजा ने स्वयं हस्ताक्षर किए थे, उसकी अवहेलना कर वह स्वयं देश से भाग रहा था। अब यह संविधान भला किस काम का, लेकिन अब हो गया। हमारा अगला हेडिंग है व्यवस्थापिका सभा। नई चुनी गई व्यवस्थापिका सभा में दो तरह के लोग थे। एक तो वे जो लाफियत के नेतृत्व में क्रमिक सुधार चाहते थे, इनकी संख्या अधिक थी परंतु प्रभाव कम था। दूसरे वो जो उग्र लोग थे और प्रभावशाली होते जा रहे थे। इनमें भी कई गुट थे। ये सभी बड़ी बड़ी बातें करने वाले गर्म मस्तिष्क वाले लोग थे। इनमें दो प्रमुख थे, जैकोबे और जिनोदिस्त। इसे एक बार और सुने। इनमें दो प्रमुख थे, जैकोबे और जिनोदिस्त। सभा के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि राजा ने पलायन कर संविधान का आधार ही ध्वस्त कर दिया था, अतः नए शासन का स्वरूप क्या होना चाहिए था। इस तरह पहली बार फ्रांस में गणतंत्र की बातें सुनाई पड़ने लगी। क्रांतिकालीन युद्ध। इस समय एक दूसरी स्थिति पैदा हो गई। फ्रांस एक युद्ध की ओर बढ़ता चला गया। युद्ध का यह सिलसिला क्रांतिकाल से शुरू हुआ था, नेपोलियन के पतन तक चलता रहा। सारे यूरोप का इतिहास उससे प्रभावित होता चला गया। इस युद्ध के कारणों के विषय में कई मत हैं। कहा जाता है कि क्रांति के नेता यूरोप के राजाओं और अन्य क्रांतिकारियों तत्वों से भयभीत थे, इसलिए युद्ध के माध्यम से अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते थे। इस माध्यम से उनका शक्ति प्रदर्शन भी हो सकता था। इसी के समांतर यह भी कहा जा सकता है कि प्रतिक्रियावादी युद्ध के सहारे क्रांतिकारी फ्रांस को परास्त कर पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना चाहते थे, किंतु जिनरोदिस्त लोग युद्ध का इस्तेमाल अपने और क्रांति के हित में करना चाहते थे। युद्ध की स्थिति में राष्ट्रभक्त के नाम पर वे सारे देश को भड़का सकते थे। उनके विचार से युद्धकाल में ही क्रांति के समर्थकों का सही परिचय मिलता और क्रांति विरोधी लोगों का दमन किया जा सकता था। कुछ भी हो, युद्ध निकट आता गया। फ्रांस के पड़ोसी देशों के शासक वहां की घटनाओं से चिंतित थे। प्रसा का विलियम और ऑस्ट्रिया का लोपोल्ड फिलनिट्स। इसे एक बार और सुने। फ्रांस का विलियम और ऑस्ट्रिया का लोपोल्ड फिलनिट्स नामक नगर में एकत्र हो चुके थे। वे फ्रांस की आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से हिचक रहे थे, पर उन्होंने लुई के प्रति सहानुभूति दिखाई। उनकी घोषणा ने स्पष्ट कर दिया कि वे अन्य यूरोपीय शासकों के साथ फ्रांस में ऐसी सरकार स्थापित करने के लिए हस्तक्षेप कर सकते थे जो राजाओं के अधिकार और फ्रांस के हित के अनुकूल हो। वे इस बात के लिए भी तैयार थे कि फ्रांस में जो कुछ भी हो रहा है उसका किसी भांति दमन कर दिया जाए, लेकिन वास्तव में यह एक धमकी मात्र थी। जब लुई ने संविधान को मान लिया तो वे चुप हो गए थे, लेकिन फिलनिट्स की घोषणा का पता चला कि आवश्यक पड़ने पर विदेशी शासक भी लुई की मदद कर सकते हैं, तो जीरोदिस्त दल के लोगों ने युद्ध के पक्ष में आग उगलना शुरू कर दिया। वे कहने लगे कि फ्रांस की क्रांति फ्रांस की सीमाओं में नहीं बन सकती, वे हर देश के पीड़ित त्रस्त लोगों के मददगार हैं। लुई ऊपर से खामोश था, लेकिन मारी आंतू आने का षड्यंत्र जारी था। वह अपनी मुक्ति के लिए अपने भाई लेवोपोल्ड और अन्य लोगों को उकसा रही थी। उधर जिनरोदिस्त प्रचार के कारण बेरोजगार लोग भारी संख्या में सेना में भर्ती हो रहे थे। सामंतों के भाग जाने के कारण सेना बिखर गई थी, नेतृत्व का अभाव था, लेकिन नई सेना में असीम उत्साह था। पेरिस में भीड़ का दबाव बढ़ता जा रहा था। असेंबली में सत्ता का संघर्ष बढ़ जाने के कारण देश में अराजकता भी बढ़ गई थी। सब कुछ अनिश्चित हो चला था। इसी समय ऑस्ट्रिया और प्रसा की सेनाओं के सेनापति ब्रुंजविक के ड्यूक ने घोषणा की कि लुई को उसके अधिकार वापस कर दिए जाए और